नमस्कार भारत, 26 जून दिन शुक्रवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। भारत ने चीन से उठाया लखवी का मुद्दा, कहा आतंकवादी आतंकवादी होता है, अच्छा या बुरा नहीं।
She said that both India and China have been victims of terrorism and therefore there should be no distinction made.
MQM की फंडिंग पर बीबीसी की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ने ब्रिटानी सरकार से मांगी विस्तृत जानकारी। भारत के कई हिस्सों में बाढ़ से स्थिति गंभीर, गुजरात में 60 लोगों की मौत, तो कश्मीरी लोगों को सता रहा है पिछले साल का डर।
ये इसमें बहुत खौफ है लोगों का कि लोग डरते हैं, घरों में लोग नहीं सोते आज क्योंकि इसका पानी का बहाव बहुत तेज है।
सुनिएगा अमेरिका से ब्रजेश उपाध्याय की डायरी और होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनिए बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार अशोक कुमार से। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर पाकिस्तानी चरमपंथी जकीउर रहमान लखवी के मुद्दे पर अपनी चिंता जताई। मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड लखवी की रिहाई के सिलसिले में भारत संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहता है, लेकिन चीन ने ऐसे प्रयासों को रोक दिया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार अब चीन ने लखवी के मुद्दे पर दोबारा विचार करने का भरोसा दिलाया है। दक्षिण अफ्रीका में एक जांच आयोग ने 2012 में एक हड़ताल के दौरान 34 खनिकों की मौत के मामले में पुलिस के खिलाफ आपराधिक जांच की सिफारिश की है। राष्ट्रपति जैकब जूमा का कहना है कि आयोग की जांच में ये निष्कर्ष निकला है कि मारिकाना खान पर हड़ताल को खत्म कराने की पुलिस की योजना सही नहीं थी और इस पर अमल करना एक गलती थी। उन्होंने कहा,
The commission found that the police operation should not have taken place
on आयोग ने पाया है कि 16 अगस्त के दिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि ये योजना ही गलत थी। आयोग ने पाया कि हड़तालियों से हथियार छीन कर उन्हें तितर बितर करना बिना खून खराबे के संभव नहीं था। ये थे राष्ट्रपति जैकब जूमा के शब्द। वहीं पुलिस हमेशा से ये दावा करती रही है कि हड़ताल के दौरान उसने खनिकों पर गोली सिर्फ आत्मरक्षा में चलाई। नाइजीरिया में ईश निंदा के आरोप में 9 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है। ये फैसला कानो राज्य में एक इस्लामी अदालत ने सुनाया। इस मामले का पूरा ब्यौरा सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जाता है कि सजा पाने वालों में कम से कम एक महिला भी शामिल है। मुस्लिम बहुल कानो राज्य में मजिस्ट्रेट अदालतों के साथ साथ शरिया अदालतें भी काम कर रही हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो बीबीसी की उस रिपोर्ट के सिलसिले में ब्रिटानी सरकार से जानकारी मांगेगी जिसमें भारत पर पाकिस्तान की एमक्यूएम पार्टी को धन देने के आरोप लगे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी गृह मंत्री निसार अली खान ने कहा कि बीबीसी की रिपोर्ट एक गंभीर मुद्दे की तरफ इशारा करती है। भारत ऐसे आरोपों को पहले ही खारिज कर चुका है। फ्रांस के गृह मंत्री ने कहा है कि सस्ती टैक्सी सर्विस उबर पॉप ने अपनी सेवाएं जारी रखी तो उसे बंद कर दिया जाएगा और उसकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी। कल फ्रांस में टैक्सी ड्राइवरों ने उबर के खिलाफ प्रदर्शन किया जिनमें से कुछ हिंसक भी हो गए। फ्रेंच टैक्सी ड्राइवरों का कहना है कि बेहद सस्ते में सेवाएं देकर उबर उनकी रोजी रोटी छीन रहा है। उबर पॉप पर फ्रांस में रोक है, फिर भी उसकी सेवाएं जारी हैं। और अफ्रीकी देश बुरुंडी की सरकार ने कहा है कि वो देश में विवादास्पद चुनावों से पहले तनाव को दूर करने के लिए हो रही संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित वार्ता में हिस्सा नहीं लेगी। बीबीसी समाचार।
तारीख 26 जून दिन शुक्रवार। नमस्कार भारत में, अभिवादन स्वीकार कीजिए पंकज प्रियदर्शी का। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कल नेपाल में थीं। मौका था भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण पर होने वाले सम्मेलन का, लेकिन इस मौके पर उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। बातचीत में उन्होंने मुंबई हमलों के कथित मास्टरमाइंड माने जाने वाले जकीउर रहमान लखवी की रिहाई पर संयुक्त राष्ट्र में कार्रवाई करने के भारत के प्रस्ताव को चीन की तरफ से रोके जाने का मुद्दा उठाया। रिपोर्ट सुनिए अशोक कुमार से।
मुंबई हमले के कथित मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की रिहाई के मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई चाहता था, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन ने भारत की इन कोशिशों पर पानी फेर दिया। चीन ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर पर्याप्त जानकारी मुहैया नहीं कराई है। चीन के इस कदम को भारत के लिए झटका माना गया। कल जब नेपाल में भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मिली तो लखवी के मुद्दे पर चीन का रुख बातचीत के एजेंडे में सबसे ऊपर था। बातचीत के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने बताया, उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं, इसलिए अच्छे आतंकवादी और बुरे आतंकवादी में कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन का इस मुद्दे पर जो रुख है वो भारत चीन के दो तरफा संबंधों में हासिल की गई शानदार प्रगति के अनुरूप नहीं है। ये थे भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के शब्द। मुंबई हमलों के सिलसिले में लखवी को दिसंबर 2008 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कई सालों तक उनके खिलाफ मुकदमा आगे नहीं बढ़ पाया। इसी साल अप्रैल में एक पाकिस्तानी अदालत के आदेश पर लखवी को रिहा कर दिया गया, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया। भारतीय अधिकारियों के अनुसार चीनी विदेश मंत्री ने इस मामले पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया है। भारत और चीन के विदेश मंत्री नेपाल में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे, जिसका मकसद भूकंप की आपदा झेलने वाले नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए राशि जुटाना है। सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्री ने नेपाल को हर संभव मदद का वादा किया। मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार भूकंप के बाद नेपाल के पुनर्निर्माण के लिए 10,000 करोड़ नेपाली रुपए यानी 1 अरब अमरीकी डॉलर देगी और इसमें 1/4 रकम अनुदान है। ये थे सुषमा स्वराज के शब्द। इस सम्मेलन में नेपाल को कुल 3 अरब अमरीकी डॉलर की राशि देने का वादा किया गया है, जिसमें चीन 48.3 करोड़ डॉलर की सहायता देगा। नेपाल में अप्रैल और मई के महीनों में विनाशकारी भूकंप आया, जिसमें 8,800 से ज्यादा लोग मारे गए और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी।
नरेंद्र मोदी की चीन यात्रा के बाद से भारत और चीन में द्विपक्षीय रिश्तों को लेकर गर्माहट देखी जा रही थी, लेकिन लखवी के मुद्दे पर दरार उभर कर सामने आ रही है। हालांकि चीन का कहना है कि हर तरह के चरमपंथ के खिलाफ उनका देश है। सुषमा स्वराज और चीन के विदेश मंत्री के बीच और क्या बातचीत हुई, यही पूछा सुशीला सिंह ने पत्रकार मानस प्रतिम भुयान से।
भारत के विदेश सुषमा स्वराज जी ने वांग यी को ये बोला कि लखवी एक आम टेररिस्ट नहीं है, ने मुंबई अटैक का प्लान किया था जिसमें 167 लोगों ने जान गंवाई। तो स्वराज जी ने वांग यी को चीन के विदेश मंत्री को ये साफ साफ कहा है कि कोई अच्छा आतंकी या बुरा आतंकी नहीं होता है, आतंकवादी तो आतंकवादी होता है और चीन और भारत दोनों देश इसका शिकार बन चुके हैं। तो इसीलिए सुषमा स्वराज जी ने उनको बोला कि चीन को एक मजबूत स्थिति लेनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ और भारत को सहयोग करना चाहिए और उसने ये अपेक्षा किया चीन से कि वो भी पाकिस्तान के जो रवैया है, मुंबई अटैक का जो ट्रायल चल रहा है उसमें पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया उनके खिलाफ चीन को पोजीशन लेने के लिए उसने आग्रह किया।
जी, इस पर वांग यी का क्या कहना था, क्योंकि इस मसले पर भारत अपना विरोध पहले भी दर्ज करा चुका है।
वांग यी ने जी को ये बताया कि उसको मसले के बारे में इतना जानकारी, डिटेल जानकारी नहीं है। उसने ये माना कि हाँ, टेररिज्म सबसे बड़ा खतरा है इस रीजन के लिए, पूरा विश्व के लिए। तो उसने सुषमा जी को ये बोला, हाँ हम भी भारत के साथ है, जो आतंकवाद के खिलाफ भारत का जो लड़ाई है उसमें चीन भी भारत के साथ है। और लेकिन उसने इस मसले पे स्पेसिफिक जो मसला है लखवी का, जहाँ पे यूएन में जो चीन ने भारत का जो प्रस्ताव पाकिस्तान के खिलाफ उसको जो नकारा, उसके बारे में वांग यी ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बोला वो पूरा मसले को जानकारी लेंगे मसले के बारे में और उसका तह तक जाएंगे, जड़ तक जाएंगे, उसके बाद भारत को वो एक रेस्पॉन्स देंगे।
मानस, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की यात्रा की थी और उसे काफी सकारात्मक देखा गया था, लेकिन अब जो लखवी के मामले पर ताजा घटनाक्रम हुआ है उससे क्या दोनों देशों के रिश्तों पर असर पड़ सकता है?
हाँ, ये असर पड़ सकता है। भारत का विदेश मंत्री ने चीन का विदेश मंत्री को ये स्पष्ट बताया। उसने बोला कि ये हम लोगों का जो रिश्ता है, ये रिश्ते में एक गर्माहट आई है। पिछले एक साल में मोदी जी ने बहुत सारा इनिशिएटिव लिया है, चीन के साइड से भी उन लोगों ने भी भारत का इनिशिएटिव को सराहना किया है। और भारत के विदेश मंत्री ने यही बोला है दैट आपने जो ये स्थिति यूएन में लिया है उससे हम लोग थोड़ा सा नाराज है कि हम लोग का जो रिलेशनशिप है उसमें ये लागवी इशू दरार पैदा कर सकता है, तो इसीलिए चीन को थोड़ा सा इस मामले में फिर से पुनर्विचार करना चाहिए।
लखवी के मुद्दे पर भारत और चीन के बीच बातचीत, ये थे पत्रकार मानस प्रतिम भुयान। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां बीबीसी की उस रिपोर्ट पर हंगामा जारी है जिसमें कहा गया था कि एमक्यूएम को भारत की ओर से फंडिंग मिलती है। पाकिस्तान ने ब्रिटानी सरकार से तथ्यों की विस्तृत जानकारी देने की अपील की है। पाकिस्तान के गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान ने कल ब्रिटानी राजदूत फिलिप बेटोन से मुलाकात की। हमारे सहयोगी सुशीला सिंह ने बीबीसी उर्दू सेवा के आसिफ फारूखी से इस बारे में बात की और जानकारी मांगी।
ये जो होम मिनिस्टर हैं चौधरी निसार अली खान, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ब्रिटिश सरकार से रابطہ करेगी और उनसे एविडेंस मांगेगी जिसमें जिससे ये साबित हो सके कि एमकेएम ने किसी जमाने में इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ से फंडिंग वसूल की थी। आपको मालूम है कि बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि एमकेएम जो है वो अपने फंडिंग जो है वो रॉ से लेती रही है और उसके बारे में बैठक हुई इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और इंटीरियर मिनिस्टर चौधरी निसार और फॉरन जो एडवाइजर हैं तारिक फातमी वो उसमें मौजूद थे और उसमें फिर यही फैसला किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से रब्ता किया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वो जो एविडेंस है जिसका बीबीसी की रिपोर्ट में जिक्र है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को फराहम की जाए।
जी, और क्या एमक्यूएम का इस बारे में कोई बयान आया है?
एमक्यूएम के जो लीडर्स हैं पाकिस्तान में उन्होंने कल शाम से कुछ अपने अपने तौर पर स्टेटमेंट जारी की हैं जिसमें कहना उनका यह है कि ये पहली बार नहीं है कि इस तरह के इल्जाम आरोप जो है वो लग रहे हैं एमक्यूएम के ऊपर। इस तरह के आरोप 92 में भी लगे थे, वो भी झूठे थे और आज जो ये बीबीसी की रिपोर्ट है ये भी झूठी है।
और पाकिस्तान सरकार का क्या कहना है इस पूरे मसले पर?
देखिए, पाकिस्तानी जो है वो ये कह रही है कि उनके पास पहले से इस तरह की इंफॉर्मेशन थी। जो होम मिनिस्टर हैं चौधरी निसार, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन थी लेकिन कोई एविडेंस नहीं थी। तो अब जबकि ये रिपोर्ट बीबीसी की आई है सामने, तो इसकी बेस पे वो चाहते ये हैं कि उनको एविडेंस मिले। एविडेंस अभी तक नहीं, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से फैसला किया है रابطہ करने का ताकि उनसे एविडेंस जो है वो ली जा सके।
और ब्रिटेन की तरफ से किस तरह का आश्वासन दिया गया इस मुद्दे पर?
अभी तक तो कोई उनको जवाब नहीं मिला है लेकिन इंटीरियर मिनिस्टर का ये कहना था कि वो खत लिखेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाजाब्ता तौर पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ताकि ये सारा मामला जो है फॉर्मली जो टेकअप किया जा सके लंदन के साथ।
ये थे बीबीसी उर्दू सेवा के आसिफ फारूखी। और अब चर्चा करते हैं भारत के कई हिस्सों में आई बाढ़ की। गुजरात में आई बाढ़ की वजह से अब तक 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित सौराष्ट्र और उसके आसपास के इलाके बताए जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। सूखे की मार झेलने वाला सौराष्ट्र का अमरेली इलाका 90 सालों में पहली बार बाढ़ का कहर देख रहा है। एक रिपोर्ट के साथ हैं अहमदाबाद से अंकुर जैन।
गुजरात में मंगलवार बुधवार को हुई तेज बारिश, तूफान और जल भराव ने राज्य में तबाही मचा दी है। बारिश की वजह से 60 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। अकेले गुजरात के अमरेली जिले में 23 लोगों के शव पानी में तैरते हुए मिले हैं। कई इलाकों में 8 घंटों में 35 इंच तक बारिश हुई है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने पानी में डूबे हुए इलाकों का हवाई दौरा किया और बताया,
गई काले अमरेली में અને મેં ખાસ કરીને ચારેક તાલુકાની અંદર ભારે વરસાદ થયો।
उन्होंने कहा कि कम समय में ज्यादा बारिश होने से तबाही मची है, किसानों को बहुत नुकसान हुआ है और हजारों की संख्या में पशु मर गए हैं। बारिश के कारण गुजरात के 400 से अधिक गांव में बिजली सेवाएं ठप है। अमरेली के शत्रुंजय नदी पर बना पुल भी ढह गया है। कई स्थानों पर रेल पटरियां भी बह गई है। गुजरात स्टेट फ्लड कंट्रोल रूम के अधिकारी ने बताया,
सभी जगह पे ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। एनडीआरएफ की 4 टीमें जो है वो यहाँ पे आ गई है। जो पशु जो है वो बहुत बड़ी तादाद में मरे हुए हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत से गाँव में प्रॉब्लम है। मोबाइल कम्युनिकेशन अभी नहीं चालू हो रहा है तो इस हिसाब से प्रॉब्लम हो रहा है।
गुजरात सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है। लेकिन कभी सूखे की मार से आत्महत्या करने वाले अमरेली के किसान आज बाढ़ जैसी स्थिति में फंसे हैं। अमरेली में पिछले कई दशकों में इतना पानी एक साथ कभी नहीं बरसा है। गुजरात सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री नितिन पटेल ने बताया,
सौराष्ट्र के अमरेली डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। फिर भावनगर, जूनागढ़ और राजकोट डिस्ट्रिक्ट के कई तहसील जो है, तालुका जो है, उसमें इसमें नुकसान हुआ है। किसानों को खेती का हुआ है, एग्रीकल्चर का हुआ है, बड़े पैमाने पर रास्ते जो टूट गए हैं उसमें नुकसान हुआ है।
गुजरात की नदियों और बांध के बारे में उन्होंने कहा,
पूरे गुजरात में जो ये दो दिन का ऐसी बारिश हुई और इसके कारण जो वहाँ की नदियाँ है वो सब वर्ष हो गई है। सौराष्ट्र का दूसरा नंबर का सबसे बड़ा जो भादर डैम है वो भी वर्ष हो चुका है और जो स्मॉल एंड मीडियम डैम्स है वो सभी बड़े पैमाने पर वर्ष हो चुके हैं।
अभी के लिए गुजरात में बारिश थम चुकी है जिससे बचाव कार्य में मदद जरूर मिल रही है। अंकुर जैन, BBC अहमदाबाद।
दूसरी ओर भारत प्रशासित कश्मीर में एक बार फिर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है और झेलम नदी में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। कई गांव और बस्तियों को खाली करा लिया गया है। हालांकि फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। एक रिपोर्ट के साथ हैं रियाज मसरूर।
दो दिन तक लगातार वर्षा के बाद आज मौसम में सुधार आया, लेकिन झेलम नदी का स्तर बढ़ता ही गया जिसके कारण लोगों में डर फैल गया। झेलम अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। इस वर्ष ये दूसरा मौका है कि कुछ दिन की वर्षा के उपरांत झेलम का स्तर काफी बढ़ गया और लोगों में पिछले वर्ष की बाढ़ की यादें ताजा हो गई।
जी, इसमें बहुत खौफ है लोगों का कि लोग डरते हैं, घरों में लोग नहीं सोते आज, क्योंकि इसका पानी का बहाव बहुत तेज है। जी, गवर्नमेंट को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए।
तैयारी हो रही है, घर में क्या करें, सामान है क्या करें उसको, क्योंकि पिछले साल जो आया था सैलाब उसकी वजह से तो लोग खौफ ज़्यादा है।
गवर्नमेंटों को इस पर खास करके नज़र रखना चाहिए, बंडों को तामीर करना चाहिए।
लोगों में जहां एक तरफ डर है वहीं सरकार के विरोध गुस्सा भी है।
अरे साहब, कौन सी गवर्नमेंट, कहाँ है गवर्नमेंट? आप देखिए, सभी लोग दरियाओं पे या पुलों पे देख रहे हैं, दरिया की देख रहे हैं कि क्या हो गया है इधर, और कोई आप कहीं आपको कोई नज़र नहीं आएगा, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नज़र नहीं आएगा कि कहीं आ जाए कि देखे कि हाँ लोगों में ये थोड़ा बहुत अवेयर करते कि कोई बात नहीं है, या उनको ये कहते कि आपको कैसे तैयार रहना है, कि अगर सैलाब आएगा क्या करना चाहिए। कोई कुछ नहीं है, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है।
प्रशासन का कहना है कि दक्षिणी कश्मीर के कुछ क्षेत्रों में कच्चे मकानों और बागानों को नुकसान पहुंचा है और झेलम के किनारे कुछ जगहों पर कट गए हैं। कई बस्तियों को सुरक्षित स्थानों की तरफ शिफ्ट किया गया है। इस वर्ष मार्च में भी लगातार वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में मिट्टी की चट्टाने खिसकने से कई घर दब गए थे और चाडूरा कस्बे में 16 लोग मिट्टी की चट्टानों के नीचे दब गए। विशेषज्ञों ने 100 वर्षीय इतिहास के एक पैटर्न का विश्लेषण करके बताया है कि हर बड़ी बाढ़ के बाद एक और बाढ़ जरूर आती है। विशेषज्ञ प्रोफेसर शकील रामशु कहते हैं,
अगर आप देखें जो 2014 का सैलाब था सितंबर का, दैट वाज वेरी एक्सट्रीम
जी,
तो उस वजह से ग्राउंड वाटर लेवल ऑलरेडी हाई कश्मीर में थे, ऑल ओवर द कश्मीर
जी।
और चूंकि हमारा मार्च का महीना बहुत वेट रहा, इट वाज अबो नॉर्मल, जिसमें रेन्स हुई तो उससे ग्राउंड वाटर लेवल और ज्यादा ऊपर आ गई, तो उस वजह से जो अभी जो रेन बहुत कम हुई, मेरे ख्याल से 30-40 मिलीमीटर रेन हुई, तो सैलाब जैसी सूरत हाल खड़ा हो गई। तो इसकी मेन वजह है, और ये कि ये ऑलरेडी अगर आप देखेंगे कश्मीर की जो फ्लड हिस्ट्री है, जब भी कोई एक्सट्रीम फ्लड आया तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में एक छोटा सा फ्लड आया।
प्रोफेसर रामशु का कहना है कि उन्होंने इस बारे में पहले ही सरकार को जानकारी दी थी। विशेषज्ञ कहते हैं कि सरकार के पास बाढ़ के खतरों से निपटने के लिए अब सिर्फ 3 महीने रह गए हैं, क्योंकि अगस्त में फिर वर्षा होगी और अक्टूबर में सरकार का दरबार जम्मू शिफ्ट हो जाएगा। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
तो कश्मीर में भी मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा, और अब जान लेते हैं कि देश और दुनिया की किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
अमरीकी विदेश मंत्री जॉन केरी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पहुंच गए हैं, जहां वो ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर समझौते की दिशा में ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ से मिलेंगे। ईरान के विवादास्पद परमाणु कार्यक्रम पर व्यापक समझौता करने के लिए 30 जून की समय सीमा से पहले ये बातचीत बहुत अहम है। फ्रांस में टैक्सी सर्विस उबर के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें टैक्सी ड्राइवरों ने कई जगहों पर कारों को आग लगाने के अलावा मुख्य सड़कों को भी बंद कर दिया है। ہاکی ورلڈ لیگ میں آج بھارت اور پاکستان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ پاکستان کے شہر کراچی میں گرمی کے کارن 1000 سے زیادہ لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں۔ ادھیکاری یہ آنکڑا بڑھنے کی آشنکا جتا رہے ہیں۔ حالانکہ کراچی میں بادل چھانے سے تاپمان میں گراوٹ آئی ہے اور لوگوں کو کچھ راحت ملی ہے۔ ادھر بھارت میں گجرات میں باڑھ سے اب تک 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں، جبکہ اتراکھنڈ میں باڑھ کی چیتاونی جاری کی گئی ہے۔ جموں کشمیر میں بھی حالات پر نظر رکھی جا رہی ہے۔
نیو یارک ایک ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کی خاصی تعداد ہے۔ یہ وہ شہر بھی ہے جہاں کی پولیس کے بارے میں بہتوں کی رائے ہے کہ وہ مسلمانوں پر شک کرتی ہے، لیکن اسی پولیس میں مسلمان آفیسر بھی ہیں، کیا ان پر یقین کیا جاتا ہے؟ رمضان کی ایک شام بی بی سی سنواداتا برجیش اپادھیائے پہنچے نیو یارک کی ایک مسجد میں۔ سنیے وہیں سے بھیجی ان کی ڈائری۔
نیو یارک میں شام کے 8 بجنے کو تھے۔ بادلوں کی وجہ سے دھندھل کا سا چھا رہا تھا، لیکن سورج ابھی ڈوبا نہیں تھا۔ شہر کی سب سے بڑی مسجد میں مغرب کی نماز کے ساتھ ساتھ افطار کی تیاری ہو رہی تھی۔ روزے پر چل رہے دن بھر کے بھوکے پیاسے مسلمان مسجد پہنچنے لگے تھے۔ کوئی دن بھر ٹیکسی چلا کر آ رہا تھا، کسی نے ریستوراں میں گراہکوں کو کھانا پروسا تھا۔ کالے، بھورے، گورے، پاکستانی، بنگلہ دیشی، عرب، افریقی، امریکی، ان میں سے زیادہ تر وہ چہرے تھے جو شہر کی بھیڑ میں تو ہوتے ہیں لیکن نیو یارک کی چمک سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ اسی مسجد کے باہر کھڑی تھی پولیس کی گاڑیاں، اور کالی وردی میں وہاں چہل قدمی کر رہے تھے نیو یارک پولیس کے 6-7 افسر۔ انہیں دیکھ کر اخباروں کی وہ ساری سرخیاں میرے ذہن میں کوندھنے لگیں کہ کس طرح نیو یارک پولیس مسلمانوں اور مسجدوں پر نظر رکھتی ہے، کس طرح مسلمان پولیس پر یقین نہیں کرتے، کس طرح ان میں سے کئیوں کو پولیس روک کر پوچھ تاچھ کرتی ہے، اس لیے نہیں کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ ایسے میں پولیس کے مسلمان افسروں کے لیے وہاں کام کرنا کتنا مشکل ہے۔ کیا پولیس محکمہ ان پر یقین کرتا ہے؟ کیا ان کی اپنی قوم ان پر یقین کرتی ہے؟ ایسے ہی کچھ سوالوں کے ساتھ میں پہنچا تھا ایک ٹی وی شوٹ کے لیے، اور وہاں میری ملاقات ہوئی نیو یارک پولیس کے 36 ورشیہ پاکستانی مول کے امریکی مسلمان آفیسر عدیل رانا سے۔ وہ وردی میں نہیں تھے، لیکن ان کے کھڑے ہونے کے انداز سے، بات چیت کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پولیس یا کسی سیکورٹی ایجنسی کے ساتھ ہیں۔ وضو کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنا جیکٹ اتارا تو کمر میں بندھی ہوئی سروس پسٹل بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ نماز پڑھتے وقت، تربوز اور کھجور کے ساتھ روزہ توڑتے وقت وہ انہی لوگوں کے بیچ میں کھڑے تھے جن پر ان کا محکمہ انہیں نظر رکھنے کو کہتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے یہ ان کے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذہب انہیں جینے کے اصول سکھاتا ہے، اور نوکری کسی اور نوکری کی طرح ہی ہے، دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ نیو یارک پولیس کے بچاؤ میں ان کا کہنا تھا کہ وہاں 1000 سے زیادہ مسلمان آفیسر ہیں۔ رمضان کے وقت انہیں ہر طرح کی سہولیت دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کام کے ساتھ ساتھ اپنی مذہبی ضرورتیں بھی پوری کر سکیں۔ پچھلے سال تو وہ خود حج کے لیے بھی گئے تھے، اور ان کے افسروں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ چاہیں تو وہ اپنی وردی بھی پہن سکتے ہیں جس سے دنیا کو پتہ چلے کہ امریکہ کی حفاظت مسلمان آفیسر بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کا کہنا ہے کہ ودیش وبھاگ نے یہ کہتے ہوئے منع کر دیا کہ اسلامک اسٹیٹ جیسے سنگٹھن ان تصویروں کا یہ کہہ کر فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ امریکہ اب مکہ مدینہ پر قبضہ کرنے کی فراق میں ہے۔ مسجد میں ہی مجھے ملے پاکستانی گجرات کے ایک صاحب، نام نہیں پوچھ پایا، اور ان کا کہنا تھا کہ جن دیشوں سے لوگ یہاں آتے ہیں وہاں بھی پولیس پر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے، اور وہی ڈر یہاں بھی بیٹھا رہتا ہے۔ کہنے لگے، مجھے یہاں رہتے 25 سال ہو گئے ہیں، جس سے بات کرو کہے گا میں تو پاکستان لوٹ جاؤں گا، کیا پتا پولیس کسی کیس میں نہ پھنسا دے، لیکن کسی کو لوٹتے نہ دیکھا نہ سنا۔ ظاہر ہے عدیل رانا نیو یارک پولیس میں رہتے ہوئے اس کے خلاف کچھ نہیں کہنے والے تھے۔ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ بھی کیمرے کے سامنے پولیس کے خلاف نہیں بات کر سکتے تھے۔ افطار شروع ہو چکا تھا، کھانے والوں کی لمبی قطاریں لگ چکی تھی۔ تبھی ایک کمرے میں میری نظر پڑی انہیں وردی دھاری پولیس والوں پر جنہیں میں نے مسجد کے باہر کھڑا دیکھا تھا۔ وہ روزے سے نہیں تھے، مسلمان نہیں تھے، دنیا کی نظروں میں مسلمانوں کے خلاف تھے، لیکن مسجد میں ہی کام کرنے والا ایک شخص انہیں بڑی عزت سے کھانا کھلا رہا تھا، اور وہ بھی بے فکر ہو کر کھا رہے تھے۔ کیمرہ دیکھ کر سبھی تھوڑے سے سک پکائے اور پھر مسکرا دیے۔ عدیل رانا نے تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کہا تھا، یقین ایک رات میں نہیں قائم ہوتا ہے، آپ ہم پر یقین کریں، ہم آپ پر یقین کریں تو آگے بڑھنے کا راستہ ضرور نکل آئے گا۔ ان کی باتوں میں ایمانداری جھلک رہی تھی، ان باتوں پر یقین کرنے کا بھی دل چاہا۔ लेकिन पता नहीं क्यों कर नहीं पाया। ब्रजेश उपाध्याय, BBC न्यूयॉर्क।
बताइएगा जरूर ब्रजेश उपाध्याय की डायरी आपको कैसी लगी। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। अशोक कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं। जी अशोक
जी। पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी पर जिस तरह विपक्ष के वार जारी हैं, आज भी लगभग सभी अखबारों में यही कुछ खबरें हैं। जनसत्ता लिखता है, भाजपा राज्य के पीछे, विपक्षी वार तेज। साथ ही अखबार ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर जिस तरह कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसकी तस्वीरें भी छपी हैं। इसी के बगल में खबर है, प्रधानमंत्री से मिले फडणवीस, पंकजा मुंडे का किया बचाव। ये खबर जनसत्ता की मैं आपको बता रहा हूँ। नवा टाइम्स लिखता है, इस्तीफे का दबाव।
शिवसेना ने मांग की है कि ये आरोप गंभीर हैं पंकजा।
शिवसेना वैसे कोई मौका नहीं छोड़ती है इस तरह का जब भी आता है,
हालांकि वो सरकार में है।
जी, सहयोगी होकर भी वो कभी कभी विपक्ष की भूमिका में आ जाते हैं। नवा टाइम्स लिखता है, इस्तीफे का दबाव दरकिनार, वसुंधरा राजे के बचाव में उतरी सरकार। जबकि दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, वसुंधरा ने माना, ललित मोदी के दस्तावेजों पर मेरे ही हस्ताक्षर, रिपोर्ट। दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी योजना, जिसे कल उन्होंने लॉन्च किया, इसे पहली खबर बनाते हुए दैनिक जागरण ने लिखा है, बदलेगी शहरों की सूरत, स्मार्ट सिटी अमृत और सबको आवास योजना हुई लॉन्च। वहीं नवा टाइम्स ने मोदी के इस भरोसे को अपने पहले पन्ने पर सबसे नीचे छापा है कि धोखेबाज बिल्डरों पर जल्द नकेल कसी जाएगी। इसके अलावा नई दुनिया में बाढ़ की सचित्र खबर छपी है, जिसमें अब तक खबर के मुताबिक 70 लोगों के मारे जाने की बात कही गई है, जबकि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी स्थिति गंभीर होने की बात इस खबर में है। सालियान के आरोपों को खारिज किया NIA ने, ये खबर है जनसत्ता की। ये खबर मालेगांव बम विस्फोट में सरकारी वकील रोहिणी सालियान के उस आरोप से जुड़ी है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद उनसे इस मामले में नरमी बरतने को कहा गया, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस आरोप को खारिज कर दिया गया है और NIA ने भी इसका खंडन किया।
NIA ने भी बयान जारी किया। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक आपका। और अब समय है खेल समाचारों का, सुमिरन प्रीत कौर के साथ।
स्पोर्ट्स की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरन प्रीत कौर। इसी हफ्ते खत्म हुई बांग्लादेश और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचेस की श्रृंखला। 3 मैचेस में से 2 मैचेस को जीतकर बांग्लादेश ने ये श्रृंखला अपने नाम की। भारत के काफी सारे खिलाड़ी कटघरे में आ गए हैं तब से, और उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व क्रिकेटर अतुल वासन बता रहे हैं कि सिलेक्टर्स के सामने क्या क्या दिक्कतें आएंगी जब बात उठेगी खिलाड़ियों की, खास करके गेंदबाजों की।
लॉन्ग टर्म में देखें अगर, तो आप वरुण अरुण और उमेश यादव जैसे ही दो खिलाड़ी हैं, इन्होंने गलती भी की है कि पिछले 2 साल इन्होंने आशीष नेहरा को नहीं खिलाया, जबकि वो अच्छी गेंदबाजी करता रहा और 10 ओवर तो वो डाल ही सकता है, तो थोड़ा सा टाइम बाद कच्चा है फील्डिंग में, पर उसको छुपाया जा सकता है।
कल से शुरू हुई एशेज सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड दौरे में कल मुकाबला शुरू हुआ कैंट और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैंटरबरी में। पहला टेस्ट मैच एशेज सीरीज का होगा कार्डिफ में 8 जुलाई से। कल शुरू हुआ दूसरा टेस्ट मैच श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच। पहला टेस्ट मैच हुआ था 17 से 21 जून तक गेल में और पाकिस्तान ने जीता था ये टेस्ट मैच 10 विकेट से। कल पाकिस्तान ने जीता टॉस और निर्णय लिया बल्लेबाजी करने का। पहले ही दिन में पहली इनिंग्स में पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो गई 148 रन बना के। और आज मुकाबला होगा हॉकी वर्ल्ड लीग में भारत और पाकिस्तान का। अगर रियो ओलंपिक्स में पाकिस्तान को अपनी जगह बनानी है तो उसे ये मैच जरूर जीतना होगा। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में, सुनिए प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कल चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात कर पाकिस्तानी चरमपंथी जकीर रहमान लखवी के मुद्दे पर अपनी चिंता जताई। दक्षिण अफ्रीका में एक जांच आयोग ने 2012 में एक हड़ताल के दौरान 34 खनिकों की मौत के मामले में पुलिस के खिलाफ आपराधिक जांच की सिफारिश की है। नाइजीरिया में ईश निंदा के आरोप में 9 लोगों को मौत की सजा एक इस्लामी अदालत ने सुनाई है। और पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो BBC की उस रिपोर्ट के सिलसिले में ब्रिटानी सरकार से जानकारी मांगेगी जिसमें भारत पर पाकिस्तान की MQ पार्टी को धन देने के आरोप लगे हैं। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाला दीपक जसरोटिया ने, पंकज प्रियदर्शी और अशोक कुमार को अनुमति दीजिए। 8 बजे विश्व भारती में आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।